धवला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 14 ओ नमः सिद्धेव्य ओ नमः सिद्धेव्य ओ नमः सिद्धेव्य ओ श्रुतात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् जय उधरसेनाहो जैन महाकम्मपयणिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणुद्धरियो समप्यो फुफ्फयन्तस्स। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें द्वितीय खंड जो खुद्दाबंध है, और उसमें हमारी सातवीं पुस्तक चल रही है, और हम आए हैं पृष्ठ संख्या 109 पर, 109। यह हमारी सम्यक तो मार्गणा की बात चल रही है। यानी हर मार्गणा में कौन कैसे होता है, वो भावों की चर्चा है। पांच भावों में से कौन सा भाव पाया जाता है। सम्मत यानी सामान्य से सम्यक दृष्टि पूछा तो कहते कि औपशमिक शायिक और क्षयोपशमिक लब्धि से सम्यक दृष्टि होता है। फिर अलग अलग पूछा, औपशमिक सम्यक दृष्टि औपशमिक लब्धि से होता है, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि क्षयोपशमिक लब्धि से होता है, क्षयिक सम्यक दृष्टि क्षयिक लब्धि से होता है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। अब हम 109 पृष्ठ पर आए हैं। सम्यक तो मार्गणा के अन्य तीन भेद ने मिथ्या दृष्टि है, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि है। यहाँ पूछते हैं, शासन सम्मा इट्ठी नाम कदम भवदी। वो इट्ठी में ई दीर्घ नहीं चाहिए, ह्रस्व चाहिए। शासन सम्मा इट्ठी। यहाँ पूछते हैं, जीव सासाधन सम्यक दृष्टि किस कारण से होता है। यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा लो। यहाँ पहले के समान निक्षेपों को करके नो आगम भाव सासाधन सम्यक दृष्टि का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था ना, द्रव्य निक्षेप में वो पहले तो नाम स्थापना तो सरल है, द्रव्य निक्षेप में वो आगम, द्रव्य निक्षेप में उस संबंधी जानने वाला जीव है उसको लेते हैं, और फिर नो आगम द्रव्य निक्षेप में पृष्ठ संख्या 109। तो यहाँ तो जीव सासाधन सम्यक दृष्टि कैसे होता है ये पूछा है, तो उसमें निक्षेप लगाकर नाम स्थापना द्रव्य भाव की चर्चा करेंगे। द्रव्य ने उसकी वर्तमान पोजीशन लेने वो पर्याय से परिणत नहीं है, तो भाव में उसमें भी आगम को जानने वाले को भाव आगम कहेंगे, और नो आगम भाव में हाँ उस रूप परिणत, उस पर्याय रूप से परिणत। तो यहाँ कहते हैं नो आगम भाव सासाधन सम्यक दृष्टि का ग्रहण किया है, यानी सासाधन परिणाम से परिणत हुआ जीव, वह सासाधन सम्यक दृष्टि कैसे होता है अर्थात किस प्रकार से होता है, ऐसी सूत्र में पृच्छा की गई है। यहाँ कहते पारिणामेण भावेण, पारिणामिक भाव से जीव सासाधन सम्यक दृष्टि होता है। देखो पारिणामिक भाव आप कहेंगे सबके है, तो सबके सासाधन सम्यक दृष्टि है। यहाँ दर्शन मोहिनी की अपेक्षा लगाना, क्योंकि पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मोहिनी की ही अपेक्षा लगती है, क्या उसका उदय है, क्या क्षोभम है, क्या क्या बात है। तो यहाँ बताएंगे अभी, यह सासाधन परिणाम क्षायिक नहीं होता, क्योंकि दर्शन मुनि के क्षय से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि हमने देखा है सासाधन गुणस्थान में क्या पोजीशन है, तो जो औपशमिक समय दृष्टि है उसका औपशमिक का काल चल रहा है, यानी दर्शन मुनि उपशमित हो पड़े हैं, और अनंतानुबंधी भी कैसे हो रहे थे, तो अपने रूप से उदय में नहीं आ रहे थे, जिसको हम कहते हैं सदवस्था रूप उपशम, अन्य चौथे गुणस्थान वाला अन्य रूप से उदय, अन्य जितने जो गुणस्थान है वहां जो कषाय चोकड़ी उसके उदय रूप थे। अब जब दर्शन मुनि का उपशम चल रहा है तो उसमें से कोई प्रकृति उदय नहीं हो सकती अंतर्मूर्त तक। इतने काल में क्या हो सकता है? अनंतानुबंधी का उदय हो सकता है, यानी जीव के परिणाम ऐसे हो जाते हैं अनंतानुबंधी परिणाम कि वहां उसका उदय भी चालू है, तो जीव दूसरे गुणस्थान में आता है जहां सम्यक तो छूट गया, अभी मिथ्यात्व हुआ नहीं है, तो बीच वाली पोजिशन है। अनंतानुबंधी के उदय से सम्यक तो छूट गया, उसकी विराधना हो गई, इसको कहेंगे सासाधन गुणस्थान। तो यहां कहते कि वो सासाधन गुणस्थान अनंतानुबंधी के उदय से आया है, परंतु उसको औदयिक नहीं कहते हुए पारिणामिक क्यों कहा? क्योंकि यहां दर्शन मुनि की कोई नई अवस्था उपशमित है, अभी यहां नया उपशम नहीं हो रहा है। आप कहेंगे उसका उपशमिक कौन है? दर्शन मुनि का उपशम है इसलिए नहीं, क्योंकि उसका मिथ्यात्व का उदय पहले में है। ऐसा तीन में से कोई उदय या नया उपशम का कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि उपशम करने का कार्य हो चुका है, उपशमित ऑलरेडी पड़ा है। इसलिए दर्शन मुनि का यहाँ कोई भाव नहीं है, ना उपशम है, ना क्षय है, ना क्षोपशम है, इसलिए उसको पारिणामिक कहा। उपशमित है परंतु यहाँ और नया उपशम करके नहीं है, ऑलरेडी उपशमित होने से चौथा गुणस्थान या पांचवा प्राप्त हुआ था, अब वहां से अभी क्यों आया? क्या अभी और नया उपशम हुआ? क्या हुआ है? ऑलरेडी उपशमित था, अभी उसकी क्या पोजीशन है? तो दर्शन मुनि में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, बस अनंतानुबंधी का उदय आ गया है। परंतु यहाँ अपेक्षा चार गुणस्थानों में दर्शन मुनि की ही लगती है और ऊपर के गुणस्थानों में चारित्र मुनि की, इसलिए उसी की अपेक्षा से बात करेंगे। तो देखो यह सासाधन परिणाम क्षायिक नहीं होता, क्योंकि दर्शन मुनि के क्षय से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। सासाधन परिणाम क्षायोपशमिक भी नहीं है, क्योंकि दर्शन मुनि के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। सासाधन परिणाम औपशमिक भी नहीं है, क्योंकि दर्शन मुनि के उपशम से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। ये उपशम हुआ और उसके कारण, उपशम के कारण इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। दर्शन मुनि के उपशम के कारण तो सम्यक तो हुआ था, ख्याल में आई बात? सासाधन परिणाम औदयिक भी नहीं है, क्योंकि दर्शन मुनि के उदय से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अनंतानुबंधी के उदय को यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि चार गुणस्थानों में उसकी बात ही नहीं करना है। अतएव पारिशेष न्याय, पारिशेष न्याय क्या होता है? अभी रहा कौन सा बचा हुआ भाव? तो परिणामी, इसको कहते पारिशेष, जो शेष बचा हुआ। परि से पारि शब्द तैयार हुआ, पारिशेष न्याय से परिणामिक नहीं, पारिणामिक भाव से, ये परिणामिक हुआ है, पारिणामिक करो उसको। पारिणामिक भाव से सासाधन परिणाम होता है। यहाँ कहते हैं वह, ये उत्पन्न शब्द कैसे आया? हमने निकाला, इन्हें उसको क्वेश्चन मार्क किया था, क्योंकि ऊपर का वाक्य देखो प्राकृत का, नीचे के पैराग्राफ की चौथी लाइन सेंटर से ना, अनंतानुबंधिनम उदयेन सासन गुणस्य उलंभादो उदय भावो किन्न उच्चदे। यहाँ कहते हैं अनंतानुबंधी कषायों के उदय से सासाधन गुणस्थान उपलब्ध होता है, अतएव उसे औदयिक भाव क्यों नहीं कहते? वहां उत्पन्न शब्द लिखा है क्या? नहीं नहीं, हमारे में तो है, मगर वो नई पुस्तक छपी उसमें भी है, ये उत्पन्न का वहां कोई अर्थ नहीं है, वो निकालना चाहिए। उसका समाधान समझ में आई ना? अब अनंतानुबंधी का तो उदय है, तो उसको औदयिक कहो ना, ये प्रश्न है। उसका समाधान नहीं, क्योंकि दर्शन मुनि के उदय उपशम क्षय व क्षोपशम म डालो वहां क्षयोपशम के बिना उत्पन्न होता है, इसलिए सासाधन गुणस्थान का पारिणामिक भाव स्वीकार किया गया। ये एक ही गुणस्थान ऐसे उसमें पारिणामिक भाव कहते हैं यहाँ पर, परंतु उसमें तो ये उसका अर्थ दर्शन मोहिनी का कुछ नया वहाँ नहीं हुआ क्षय उपशम, क्योंकि उपशम से तो उपशम सम्यक तो हुआ था, उपशम से शासाधन नहीं हुआ है, इसलिए उसको उपशम को भी नहीं लिया। नियम से अनंतानुबंधी का उदय शासाधन गुणस्थान का कारण नहीं है, क्योंकि वह चारित्र मोहनीय है, इसलिए उसे दर्शन मोहनीय मानने में विरोध आता है, क्योंकि दर्शन मोहनीय के ही जो कुछ अवस्थाएं हैं उसके कारण ही चार गुणस्थानों की व्यवस्था है, पहले चार गुणस्थान। अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय का भेद है ना, चारित्र मोहनीय के भेद मालूम है आपको? हाँ, अनंतानुबंधी चार, अप्रत्याख्यानावरण चार, प्रत्याख्यानावरण चार, संज्वलन चार, नौ नौकश है, वो चारित्र मोहनीय है। अब इसलिए शंकाकार फिर पूछते हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क दर्शन और चारित्र दोनों का मोहन करने वाला है, मोहन यानी उसको विपरीतता लाता है ना, उसका समाधान, भले ही अनंतानुबंधी चतुष्क उभय मोहनीय हो किंतु यहाँ वैसी विवक्षा नहीं है, विवक्षा दर्शन मोहनीय की है, इसलिए अनंतानुबंधी का कार्य दर्शन यानी सम्यक्तों को भ्रष्ट करने में भी होता है और चारित्र को भी, फिर भी उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। तो अनंतानुबंधी को उभय मोहनीय कहा, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दोनों का कार्य कर रहा है, लिखा है ना, पर उसको उभय मोहनीय नहीं कहते, उसको तो चारित्र मोहनीय ही कहेंगे। अनंतानुबंधी चतुष्क चारित्र मोहनीय ही है, यानी वो प्रकृति चारित्र मोहनीय की है, हाँ, परंतु वो तो सम्यक्त्व का घात में निमित्त होती है और मिथ्यात्व के साथ साथ उसका कार्य चलता है, इसलिए उसको कहेंगे वो तो उसमें सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी है करके, यानी विवक्षावश उसको उभय मोहनीय कहेंगे तो कहेंगे, परंतु वो है प्रकृति चारित्र मोहनीय की। अब ये सम्यक्त्व मार्गणा का एक भेद है, सम्यम इच्छा दिट्ठि नाम कदम भवदि, जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि किस कारण से होता है, प्रश्न चिन्ह। यह सूत्र सुगम है, कहते खवो समियाए लब्धिये, क्षायोपशमिक लब्धि से जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि होता है। अब यहाँ पूछेंगे क्षायोपशमिक कैसे होता है, क्योंकि ये तो सर्वघाती का उदय है ना। शंका, चूंकि सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि होता है, यानी यह सम्यक मिथ्या तो ये प्रकृति है वो सर्वघाती है। सर्वघाती क्यों? अपना प्रतिपक्ष जो है सम्यक्त्व का पूरा घात करती है, इसलिए शंका यही पूछ रहे, तो उसके क्षौश्रमिक भाव नहीं बनता है, ये प्रश्न है। समाधान, सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व के स्पर्धकों में सर्वघातीपना भले ही हो, किंतु अशुद्ध नय की विवक्षा से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के स्पर्धकों में सर्वघातीपना नहीं होता, क्योंकि उनका उदय रहने पर भी मिथ्यात्व मिश्रित सम्यक्त्व का कण पाया जाता है। सर्वघाती स्पर्धक तो उन्हें कहते हैं जिनका उदय होने से मूल यानी प्रतिपक्षी गुण घात हो जाता है। यहां जन्म जन्म शब्द निकाल दो, ये कहां से बीच में शब्द आते हैं, किंतु सम्यक मिथ्यात्व में तो हम सम्यक्त्व का निर्मूल विनाश नहीं देखते, क्योंकि यहाँ सद्भूत और असद्भूत पदार्थों में समान श्रद्धान होता देखा जाता है। तो तत्वन संबंधी श्रद्धान जो है वो तो सद्भूत असद्भूत पदार्थों की बात है, जो जात्यंतर परिणाम कहने में आता है। कुछ अंश वहाँ, कुछ अंश और ये बाकी तो बिगड़ गया। यानी उसका सम्यक तो नहीं कहेंगे, बिगड़ा हुआ ही है, परंतु उसका कुछ अंश है, इसलिए मिला जुला परिणाम कहते हैं, मिश्र परिणाम। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व का क्षौषमिक भाव बन जाता है। देखो आपका प्रश्न ऐसा है, सम्यक मिथ्यात्व में से नियम से नीचे आता है कि ऊपर जाता है, दोनों ओर रास्ता है, या तो पहले में या चौथे में, ऊपर यानी पांचवे में नहीं जा सकता। सम्यक मिथ्यात्व में आएगा कहाँ से मालूम है? हाँ, छठे से भी आ सकता है, पांचवे भी से आ सकता है, चौथे से भी आ सकता है, और सादी मिथ्या दृष्टि पहले से भी जा सकता है तीसरे में डायरेक्ट। परंतु तीसरे में से कहाँ कहाँ जाएगा, या तो पहले में या चौथे में, दो ही रास्ते उसके।
दूसरे में भी नहीं
जाएगा? ना ना, दूसरे में तो औषमिक सम्यक दृष्टि ही जाता है, जहाँ दर्शन मुनि उपशमित है। यहाँ सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, उसका अर्थ क्या है? मिथ्या तो उसके दो, एक निशे के ऊपर पड़ा है, सम्यक प्रकृति भी एक निशे के ऊपर पड़ी है। ऐसी पोजिशन में अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा, तो उसके साथ मिथ्यात्व का आ जाता है। जब औषमिक की कंडीशन थी तो तीनों उपशमित थे, अनंतानुबंधी के साथ मिथ्यात्व का उदय होने के लिए वो यानी वो तो परमाणु अवेलेबल नहीं थे, वो उपशमित ऊपर पड़े थे। क्षोपम सम्यक्त्व में भी क्या होता है, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो दूसरे निषेक से ऊपर पड़े हैं, और उदय रूप निषेक सम्यक प्रकृति का है। वेदक सम्यक दृष्टि के जब अनंतानुबंधी का उदय आता तो वहां मिथ्या तो पड़ा है, उसका भी उसके साथ उदय चालू हो जाता है। उपशमिक कंडीशन वो तो अंतर्मूर्त, ऊपर उसके कुछ निषेक है ही नहीं, यानी वो बीच में निषेक ही नहीं है, तो इसलिए उसका डायरेक्ट उदय नहीं हो सकता है। यानी सम्यक मिथ्यात्व क्षौपशमिक कैसे ये बताए ना, क्षौपशमिक भाव। यानी मिथ्यात्व जैसा उसका सर्वघाती पना नहीं है, इस उस अपेक्षा से बात बताई। अब पूछते मिथ्या दृष्टि नाम कदम भवदी, जीव मिथ्या दृष्टि किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। अभी तो मालूम है ना, ये तो औदयिक भाव है। कहते मिच्छत्त कम्मस्य उदयेन, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, यह प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए। रेगुलर दंड कहते ना, फुल स्टॉप वो देना। यह सूत्र भी सुगम है, ये सम्यक तो मार्गणा की बात उन्होंने बताई। अब संगी मार्गणा की बात करेंगे। सन्नी अनुवादेन सन्नी नाम कदम भवदी, संगी मार्गणानुसार जीव संगी किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। संगी मार्गणा के भेद मालूम है? संगी असंगी, और तीसरा भेद संगी असंगी से पार, क्योंकि केवल यानी जो है वो मन के द्वारा नहीं जान रहे, तो तेरहवे चौदहवें गुणस्थान को उससे पार कहेंगे। ये ते संगी मार्गणानुसार जीव संगी किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। खवो व समियाय लब्धी है, क्षयोपशमिक लब्धि से जीव संगी होता है। ये तो आसान है ना समझने जैसा, क्योंकि क्योंकि संगी में किसकी, मन संबंधी ज्ञान की बात चल रही है, तो उसका कौन सा है कर्म वा नौ इंद्रियावरण, क्योंकि नौ इंद्रियावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के अपनी जाति विशेष के कारण अनंत गुणी हानि रूप घात के द्वारा देशघातीपने को प्राप्त होकर उपशांत हुए उनके उदय से शब्द डालो, उदय से संगीपना देखा जाता है। देखो देखो ये उदय हो रहा है, परंतु उपशांत होकर उदय हो रहा है। देशघातीपना होना ये उसका उपशांत कह दिया उसका। पहले भी आपका उपशम की बात पूछी थी ना आपने, फिर से पढ़ते कौन से कर्म की बात है, कौन सा क्षोपशम चल रहा है? तो नौ इंद्रियावरण कर्म के, जब बंधा था तो अभी जैसे हमने देखा था असंगी जीवन तक नौ इंद्रियावरण के सर्वघाती का उदय है, उनके मन संबंधी ज्ञान नहीं है। अब जी संगी जीव है तो उनके नौ इंद्रियावरण का क्या होगा, देश यानी वो देशघाती रूप से उदय में आ रहे हैं। तो सर्वघाती स्पर्धकों के अपनी जाति विशेष के कारण अनंत गुणी हानि रूप घात के द्वारा, उसका अनुभाग का घात कितना हो रहा है, अनंत गुणा घात हो रहा है, अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहे, देशघातीपने को प्राप्त होकर, यानी सर्वघाती है वो देशघाती रूप होकर उपशांत हुए उनके, उसी को वो सर्वघाती का देशघाती होना उसको कहेंगे उपशांत हो गए, और ये उपशांत होकर उसका उदय आ रहा है। उपशमित ने ऊपर पड़े ऐसा उसका अर्थ नहीं है, पहले भी बात बताए सर्वघाती देशघाती होकर उपशांत हुए, अब उनका देशघाती रूप से उदय होगा। यहाँ लिखा ना उपशांत हुए उनके उदय से संगीपना देखा जाता है, ये बात कल उपशांत की बात आई थी ना, जरा निकालो कहाँ पूछा था आपने, हाँ देशघाती स्पर्धकों का अवस्थान, देशघाती स्वरूप से जो अवस्थान, वह ऑप्शन है 103 पेज पर था। यानी सर्वघाती देश रूप घाती रूप से होना ही उसी को कहेंगे वो उपशांत हो गए। यानी यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना 111 पर, देशघातीपने को प्राप्त होना उनका उपशांत होना है। वहां पर भी लिखा ना देशघाती स्पर्धकों देशघाती स्वरूप से अवस्थान रहना, वही उपशांत है। हाँ यानी वो औपशमिक भाव वाला उपशांत तो वो वैसा नहीं लेना है, अभी अभी हमने पढ़ लिया। अब पूछते हैं 84 सूत्र में असन्नी नाम कदम भवदी, ये कदम भवदी दोबारा हुआ है सूत्र में दो बार, आप में भी दो बार लिखा है ये डिक्टो सारे भूले हुए ऐसे के वैसे रखिए। तो कहते जीव असंगी किस कारण से होता है, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाना। अब आते 112 पृष्ठ पर, यह सूत्र सुगम है, उसको कहते उदयेन भावेण, औदयिक भाव से जीव असंगी होता है क्योंकि उसको मन संबंधी ज्ञान नहीं है, तो नौ इंद्रियावरण का सर्वघाती का उदय चलेगा, है ना, क्योंकि नौ इंद्रियावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से असंगीपना देखा जाता है। नो इंद्रियावरण कर्म असिद्ध भी नहीं है, कोई कहेंगे नो इंद्रियावरण नाम का कर्म ही नहीं होता, तो कहते वो असिद्ध नहीं है, नहीं वो तो प्रसिद्ध है, क्योंकि कार्य के अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा कारण के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं, कार्य क्या हो रहा है मन संबंधी जानना या नहीं जानना, नो इंद्रियावरण कर्म है तो उसका उदय है सर्वघाती का, तो वहां मन संबंधी ज्ञान का उघाड़ नहीं है, और जिनका उसका जो उदय नहीं है देशघाती क्षोभशम है उनको मन संबंधी ज्ञान पाया जाता है, यानी कार्य पाया जाता है। यहाँ क्या कहा, कार्य के अन्वय और व्यतिरेक के, यानी होने और नहीं होने के कारण, कारण के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। अब आगे का प्रश्न है, नेव सन्नी नेव असन्नी नाम कदम भवदी, जीव संगी न असंगी किस कारण से होता है। मनीषा बेन अभी हमने बताया था आपको, न संगी न असंगी ऐसा कौन सा जीव है, हा? सिद्ध भगवान, और भी कोई है, 13वें 14वें वाले भी मन के द्वारा नहीं जान रहे, इन्हें 13वें 14वें और सिद्ध, क्योंकि वे केवल ज्ञानी है ना, तो क्यों जाने, तो क्षायिक भाव है उनका वो। यह सूत्र सुगम है। खैयाए लब्धिये, क्षायिक लब्धि से जीव न संगी न असंगी होता है। ज्ञानावरण कर्म के निर्मूल क्षय से, पांचों ज्ञानावरण का पूरा क्षय हो गया, निर्मूल क्षय यानी सत्ता में से नष्ट हुआ। जो नौ इंद्रिय निरपेक्ष लक्षण वाला जीव परिणाम उत्पन्न होता है उसी को क्षायिक लब्धि कहते हैं। अभी उसके नौ इंद्रिय का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। उसी क्षायिक लब्धि से जीव न संगी न असंगी होता है। संगी में तो उसका क्षोभशम था, नौ इंद्रियावरण का, देशघाती का तो उदय चल रहा था, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तो केवल ज्ञान हो गया, पूरा सभी पांचों ही ज्ञानावरण नष्ट हो गए। अब अंतिम जो मार्गणा, आहारानुवादेन आहारो नाम कदम भवदि। आहार किसको कहना मालूम है ब्रह्मा? हाँ, शरीर संबंधी परमाणु को ग्रहण करता है उसको आहारक कहेंगे, क्योंकि मन वाणी की बात अभी हम छोड़ देते हैं। हाँ, केंद्रीय भी है और वो मन वाणी के परमाणु जब उसकी पर्याप्ति होती है तब उसकी ग्रहण वगैरह होगा। अभी तो यहाँ हम कहेंगे शरीर के परमाणुओं को जो ग्रहण करता है उसको आहारक कहेंगे, और अनाहारक जो नहीं ग्रहण करता। तो नहीं ग्रहण करने वाले कौन जीव है? तो अनादि से जब जब विग्रह गति में, मोड़ वाले विग्रह गति में था तब उसको अनाहारक थे, और केवली समुद्घात में अनाहारक, और अयोगी केवली अनाहारक। अब सिद्ध तो है ही है। तो यहाँ पूछते हैं कि आहार मार्गणानुसार जीव आहार किस कारण से होता है, यानी वो शरीर के परमाणु क्यों ग्रहण करता है। यह सूत्र सुगम है। उदयेन भावेन, औदयिक भाव से जीव आहारक होता है, यहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए। एक सौ तेरह पृष्ठ पर आते हैं। औदारिक वैक्रिक व आहारक शरीर नाम कर्म प्रकृतियों के उदय से जीव आहारक होता है, क्योंकि शरीर के परमाणुओं का ग्रहण है, या तो औदारिक शरीर संबंधी, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, वैक्रिक शरीर नाम कर्म के उदय से उस जाति के परमाणु का ग्रहण है, आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से उस जाति के, सारे मिलकर आहार वर्गणा ही कहेंगे सबको, परंतु उसकी जो रेंज जुदी जुदी है। शंका, तेजस और कार्मण शरीर नाम कर्म प्रकृतियों के उदय से जीव आहार क्यों नहीं होता, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा लो। अरे वो तो हमेशा ही हर समय अनादि से ले रहे हैं ना, तेरवे के अंत तक, तो उसमें अनाहारक होने का सवाल नहीं आएगा। केवल औदारिक वैकरिक आहारक शरीर संबंधी ही बात है, इसलिए पूछते हैं कि तेजस कार्मण वाले को क्यों नहीं लिया, उसको भी कर्म आहार कहेंगे ना, कार्मण शरीर का यानी कर्म परमाणु को ग्रहण होता है उसको कर्म आहार वाला कहेंगे। और ये कौन सा है शरीर के परमाणु? नो कर्म आहार। एक होता है कवलाहार, भोजन करते हैं मुंह से, ग्रास ग्रहण करते हैं उसको, और एक होता है लेपाहार, एक होता है ओजाहार, है ना, ऐसे अलग अलग। एक होता है मानसिक आहार, देवों के इच्छा होती है, कंठ से अमृत झरता है। तो यहाँ कहते पूछते हैं तेजस और कार्मण को उसको क्यों नहीं कहते? तो नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर विग्रह गति में भी जीव के आहारक होने का प्रसंग होता है, और वैसा है नहीं, क्योंकि विग्रह गति में जीव के अनाहारक पना देखा जाता है, और मूल सूत्रों में भी वर्णन है उसका। अब पूछते अनाहारो नाम कदम भवदि, जीव अनाहारक किस कारण से होता है। यह सूत्र सुगम है। औदयिक भाव से तथा क्षायिक लब्धि से जीव अनाहारक होता है, क्योंकि क्षायिक लब्धि वहां तो हमें अयोगी को भी लेना है, सिद्धों को भी लेना है, वहां क्षायिक लब्धि सिद्ध करनी है। अयोगी केवली भगवान और सिद्धों के अनाहारकपना क्षायिक होता है, क्योंकि उनके क्रमशः घाती कर्मों का व समस्त कर्मों का क्षय होता है। ये घाती कर्मों का क्षय है, परंतु अयोगी के वो शरीर नाम कर्म का उदय भी रुक गया है, और वहां पर भले वो सत्ता में फिर भी उसको क्षय कहते, पहले भी ये बात आई थी। किंतु विग्रह गति में औदयिक भाव से अनाहारकपना होता है, क्योंकि विग्रह गति में सभी कर्मों का उदय देखा जाता है। घाती कर्मों का तो क्षय है ही है, और क्षायिक भाव तो घाती कर्मों में ही सिद्ध हो जाते हैं मुख्यतः, परंतु यहाँ शरीर नाम कर्म का उदय है, फिर भी अयोग केवली को उदय नहीं है। और वहां तो किसी पहले आई थी ना ये बात, आप नहीं थे क्या, कि क्षय नहीं वो सत्ता में फिर भी क्षय क्यों कहा, योग के प्रकरण में आया था। वहां पर भी ऐसी बात, उसको क्षय कहा था, योग की बात निकालो। अयोगी क्यों होता है ऐसा पूछा गया था। ये कहाँ गई बात, यहाँ 78 पेज पर क्षायिक लब्धि से जो अयोगी होता है योग के कारणभूत औदारिक, पेज नंबर 78। परंतु ये ऐसा प्रश्न पूछा था कि सत्ता में है फिर भी क्यों, लेशा में पूछा था क्या, देखो लेशा में 106 पर, पहला जो 63 नंबर का सूत्र निकाला, वहां बताया था क्षायिक लब्धि से जीव अलेशिक होता है, लेशा चली गई उसकी, लेशा के कारणभूत कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम को क्षायिक लब्धि कहते हैं, उसी क्षायिक लब्धि से जीव अलेशिक होता है, यह सूत्र का तात्पर्य है। शरीर नाम कर्म की सत्ता का होना क्षायिकत्व के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि क्षायिक भाव शरीर नाम कर्म के अधीन नहीं है। ये क्षायिक भाव तो सारे घाती कर्मों पर घटित होते हैं, और वहां वो भले उसके उदय में हो रहा था ग्रहण होना, योग उसके कारण हो रहा था, फिर भी उसको उसका उदय भी मिट गया है, इसलिए उसको भी क्षायिक भाव कह दिया वहां पर। यही बात यहाँ लागू होती है। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व नामक अनुयोग द्वारा समाप्त हुआ। पहले में पहले ये बताया था स्वामित्व के साथ वो 11 अनुयोग द्वार चालू हो जाते हैं, ये बात बताई थी, निकालो जरा। बंधकों की प्ररूपणा में चल रही थी बात, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, पेज नंबर 25 में ये बात लिखी थी, उसमें 11 अनुयोग द्वार लिखे हैं। ग्यारह अनुयोग द्वार में बंधक की सत प्ररूपणा अलग निकालकर बाद में उसके 11 अनुयोग बताए, उसमें से एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व हो गया। अब एक जीव की अपेक्षा काल की प्ररूपणा चलेगी, इन्हें मार्गणाओं में उन्होंने अलग अलग उसकी बात बताई थी, यानी कौन से मार्गणा वाले और उस किस कारण से होते वगैरह चर्चा अपनी हो गई। अब यहाँ आते हैं पेज नंबर 114 पर, एक जीवेण कालानुगमो, ये उसका हेडिंग है। एक्चुअली हेडिंग का उन्होंने ट्रांसलेशन करके नहीं लिखा इसमें, अब सूत्र पढ़ते हैं। एक जीवेण कालानुगमेण गदीयानुवादेन निरय गदीये नेरय्या केवचिरम कालादोहंती। अब एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है, एक जीव की अपेक्षा नहीं, जघन्य उसके आयु और उत्कृष्ट आयु को ले लेंगे। अब मनीषा बहन बोलेंगे, नाना जीवों की अपेक्षा हम कहेंगे, नरक गति में नारकी कितने काल तक रहते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा हम एक जीव की अपेक्षा नहीं बता रहे। नाना जीव का अर्थ होता है अनेक जीव, सभी जीवों की अपेक्षा से निरंतर सर्वदा, क्योंकि नरक में कोई नारकी न हो ऐसा बन सकता है कभी? चारों गतियों के जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। समझ में? नाना जीव का अर्थ क्या है? अलग अलग जीवों की अपेक्षा नरक गति हमेशा होगी, नारकी हमेशा होगी। एक जीव की अपेक्षा जब बात करेंगे, कोई यहाँ अन्य गति से मरकर वहां गया और वहां की वायु भोग कर फिर वापस आया, तो वहां जघन्य कितने काल तक रहेगा? तो 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर। ये पूछ रहे हैं। तो प्रश्न क्या पूछा? देखो, एक जीव की अपेक्षा कालानुगम से गति मार्गणा के अनुवाद से, क्योंकि कालानुगम है, हर एक मार्गणा पर लगाएंगे, यानी हर एक मार्गणा में जीवों का रहने का काल बताएंगे। नरक गति में नारकी कितने काल तक रहते हैं? ये प्रश्न समझ में आया? क्यों नहीं समझा? अभी वो तो काल की बात चलेगी, ये पूरा ही अनुयोग द्वार जिसको कहेंगे, काल की बात है। हर मार्गणा में वो जीवों का काल बताएंगे कितना है, तो उसमें जघन्य काल और उत्कृष्ट काल हमको देखना है। शंका, यहाँ मूलोग अर्थात गति सामान्य की अपेक्षा प्ररूपणा क्यों नहीं की? हमेशा मूलोग का अर्थ क्या होता है? गतियों की अपेक्षा, जीव गतियों में कितने काल तक है, तो अनादि से तो गतियों में ही घूम रहे ना। तो कहते पहले सामान्य से कथन करते फिर विशेषों में कहते, तो यहाँ क्यों नहीं कहा, ये उनका प्रश्न है। नहीं, क्योंकि चारों गतियों के प्ररूपण से उसका ज्ञान हो जाता है। सूत्र में नरक गति पद का निर्देश शेष गतियों का निषेध करने के लिए किया है। सूत्र में नरक गति शब्द क्यों डाला? क्योंकि अन्य गतियों की बात नहीं हो रही, नरक गति की हो रही, जो विवक्षित बात है उसको लेकर वहां कथन हो रहा है। अब उसका उत्तर, जहन्नेन दशवस्स सहस्राणि, जीव जघन्य से 10,000 वर्ष तक नरक गति में रहता है, क्योंकि किसी तीर्यंज या मनुष्य के 10,000 वर्ष की आयु स्थिति वाले नारकियों में उत्पन्न होकर, ये तीर्यंच और मनुष्य ही क्यों लिया, देव और नारकी को क्यों छोड़ा? आपको मालूम है नरक में जाने वाले कौन होते हैं? नारकी नरक में नहीं जाते हैं इमीडिएट, देव भी नहीं जाते हैं, इसलिए तीर्यंच और मनुष्य शब्द डाला। तो कहते 10,000 वर्ष की आयु स्थिति वाले नारकियों में उत्पन्न होकर वहां से निकले जीव के नरक में 10,000 वर्ष प्रमाण स्थिति देखी जाती, देखी शब्द डालो वहां पर, देखी जाती है। दस वर्ष समिति दंसना दो, देखी जाती है। अब उत्कृष्ट भी बताएंगे, उक्कसेन 33 सागरोपमानि, जीव उत्कृष्ट से 33 सागरोपम काल तक नरक में रहता है। देखो, नरक में या देव में तो एक भव को ही लेना है। पूछेंगे तीर्यंच में कितने काल तक रहता है? अनंत काल, असंख्यात, क्योंकि अनादि से रहने वाले की बात नहीं लेना, अन्य गति से वहां गया हुआ तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तीर्यंचों में बिता सकता है, उसके तो अनेक भव एक के बाद एक लिख सकते हैं। ख्याल में आई बात? कैसे सोचना है। तो यहाँ नरक की बात चल रही थी, जीव उत्कृष्ट से 33 सागरोपम काल तक नरक में रहता है। किसी तीर्यंच या मनुष्य के सातवीं पृथ्वी में 33 सागरोपम की आयु स्थिति को बांध कर और वहां उत्पन्न होकर अपनी स्थिति पूरी करके निकले हुए जीव के 33 सागरोपम मात्र नारक भाव पाया जाता है। उसका नारक भाव कहा उसमें, उतने काल तक उसका नारक भाव चल रहा है, इसको गति औदयिक भाव कहते हैं ना, उसको वैसा भाव चल रहा है उसका। अब ये नरक गति इन जनरल बात की, अब एक एक नरक की, क्योंकि गति मार्गणा में उसके सातों नरकों का कथन अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पूछते हैं पढ़माए पुढ़विए नेरैया केवचिरम काला दोहंती। प्रथम पृथ्वी में नारकी जी वहां कितने काल तक रहते हैं, कितने काल तक यह शब्द समय क्षण लव मुहूर्त ये तो अलग अलग यूनिट्स है काल के, दिवस पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर युग पूर्व वो नीचे उसका उकार करो पल्योपम व सागरोपम आदि काल मानों की अपेक्षा रखता है। समय तो मालूम है, क्षण और लव को हम देखते हैं यहाँ पर। जरा मुझे वो जैन सिद्धांत कोश निकाल के देना, काल की बात है। सेकंड और क्षण को, समय को और क्षण एक ही बात होगी। जरा मुझे सिद्धांत कोश निकाल के देना वहां पर। राइट साइड बीच वाला कंपार्टमेंट भाग दो है क्या, उसमें लिखा है ना 216 में पेज लिखा है दो नंबर का। हाँ वो राइट लेफ्ट साइड में लिखा है, लेफ्ट वाला पहला एक नंबर नहीं दो नंबर चाहिए। को काल में आया ना वो 216। समय तो मालूम है हम, क्षण की बात नहीं लिखे, समय को ही क्षण भी कहेंगे वहां पर। लव के लिए देखो समय किसको कहेंगे, एक परमाणु के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जब मंद गति से जाता है उसको एक समय कहेंगे। जघन्य युक्ता संख्या समयों की एक आवली होती है, यहाँ आवली नहीं लिखी है परंतु हमें मालूम है वो। और संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है, सात उच्छ्वासों का एक स्तव होता है। देखो आपको लिखना है तो जघन्य युक्ता संख्यात समय इज इक्वल टू एक आवली, जघन्य युक्ता संख्यात आपको मालूम है ना, ये तो हमारे संख्यात आवली का एक उच्छ्वास होता है। नहीं 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 उच्छ्वास ये क्षण है, ऐसे पद्धति है उच्छ्वास। अब उच्छ्वास में उन्होंने सेकंड वहां जो गिनाए सेकंड 2880/3773 एक उच्छ्वास के लिए 2880/3773 2880/3773 सेकंड ये ब्रैकेट में डालो। एक उच्छ्वास कितने सेकंड का है उसके बाद बताए। उच्छ्वास हमने देखे ना ये पल्स में जो अंतर होता है उसको उच्छ्वास कहते हैं, ये उतने सेकंड का हो जाता है। जघन्य युक्ता संख्यात समय इज इक्वल टू एक आवली, संख्यात आवली इज इक्वल टू एक उच्छ्वास। और उच्छ्वास को उन्होंने सेकंड में बताने की कोशिश की है 2880/3773 सेकंड। हम कहते ना वो एक श्वास में 8-10 बार, वैसा वो एक श्वास की बातें उन्होंने की है। एक श्वास है ना 3-4 सेकंड करीबन हम इसको निकालते हैं। ये भी करीबन उतना ही है ना, देखो ना 37 है नीचे, 9 चौक 36 और ऊपर 28, 9 3 27, 3/4 करीबन उतना ही है। उन्होंने और डिटेल में निकाला है उसको। अब 7 उच्छ्वास इज इक्वल टू 1 स्ट्रोक, सात उच्छ्वास 7, 1 स्ट्रोक उसको सेकंड में उन्होंने लिखा है 5 पूर्णांक, ब्रैकेट में लिखो 185/, यानी 185 डिवाइडेड बाय 539 सेकंड। यानी 7 उच्छ्वास का 1 स्ट्रोक हुआ और 7 स्ट्रोक का 1 लव हुआ। अब लव को सेकंड में लिखना है तो 37 37 पूर्णांक 31/77 सेकंड हो जाते हैं। 37 पूर्णांक हो गए और 31/77 यानी 31/77 अंश। आपने वो 7 कैसे बताया, 7 समय कैसे के?
37 1/2 सेकंड लिखा।
अच्छा ये लव हो गए ना, 38.5 लव 38 1/2 अंश लव इज इक्वल टू 1 घड़ी, जिसको नाली भी कहते हैं, 24 मिनट, 1 नाली दैट इज इक्वल टू 1 घड़ी दैट इज इक्वल टू 24 मिनट। मिनट कहते हिंदी में, मिनट नहीं मिनट, मिनट यहाँ मिनट ही लिखा है, नहीं एक जगह मिनट लिखा है। ठीक, फिर से बोलो। हाँ 38.5 लव इज इक्वल टू 1 घड़ी, जिसको नाली भी कहते हैं, नाली को ही घड़ी कहते हैं। अब 2 घड़ी कहो या 2 नाली कहो, इज इक्वल टू 1 मुहूर्त, जिसको 48 मिनट कहेंगे हम। दो नाली कहो या 2 घड़ी इज इक्वल टू, हम कहते हैं ना अंतर्मुहूर्त, यानी उससे कम काल को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। ये 48 मिनट वाला 1 मुहूर्त होता है। अब कहते 1510 निमेश और 3773 उच्छ्वास, यानी उसी का अर्थ होता है। वो 1 मुहूर्त में क्या क्या होते हैं तो उसमें निमेश कितने होते हैं? तो 15 से 10 निमेश होते हैं। निमेश मात्र कहते ना, फ्लिकिंग ऑफ द आईलैशेस, 1510। हाँ, एक मुहूर्त में, या एक मुहूर्त में अगर उच्छ्वास गिनना है तो 3773, 1510। उच्छ्वास उसी में एक घड़ी, यानी एक मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास।
अब
दो नाली का एक मुहूर्त समझ में आया? उसी का, उसी में निमेश कितने होते हैं? तो 1510। निमेश यानी वो आंखें बंद करके खोलते हैं ना, उसको हम कहते निमेश मात्र में। और उसी में उच्छ्वास कितने होते हैं? तो 3773। ये मुहूर्त का प्रमाण हुआ ना। अब 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, यानी रात दिन 24 घंटे।
तो एक मुहूर्त में आपने 377 की उच्छ्वास बताए।
हो
एक मुहूर्त में आपको 30 मिनट मिला ना उधर।
बराबर एक मिनट, अभी गिनो ना, एक मिनट में 78 आपके श्वासोश्वास ये पल्स होती है। हाँ, तो वो नाक से लेने वाली हवा मत गिनो। अभी आगे का तो मालूम है, 15 दिन का एक पक्ष वगैरह वगैरह। हाँ, अब देखो ऊपर क्या क्या लिखा था, और क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, पक्ष तो 15 दिन है ना। हाँ, मास 30 दिन, ऋतु है 2 महीने, दो, एक ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, वो दो दो महीने में होते ना। वो साल में 6 ऋतु याद किए थे कि स्कूल में नहीं किए थे?
नहीं।
हाँ, दो महीने का एक ऋतु होता है। अयन, दक्षिणायन, उत्तरायण होता है ना, 6 महीने का होता है। संवत्सर ने 1 साल। हाँ, अब उसमें युग, 5 साल का एक युग होता है, हमने वो इसमें देखा था, आपको शायद याद होगा, त्रिलोकसार में। यहाँ तो युग को वर्ष शतक कहा है। हाँ, पांच साल का एक युग होता है, क्योंकि हमने वो त्रिलोक पन्नति में, यहाँ युग नहीं, नहीं अलग अलग कुछ, अच्छा नहीं नहीं वो नहीं नहीं एक युग यानी 5 साल होता है। 12 वर्ष का एक पहले हम कहते, वो तो तप होता है ना, तप होता है वो युग, तो 5 साल का होता है। पूर्व तो मालूम है ना, अभी 1 करोड़ पूर्व, 84 लाख पूर्व। एक पूर्व में कितना होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष। हाँ, 84,000 × 84,000, 70,56,000 और आगे करोड़। पल्ले तो मालूम है, अभी बहुत बार वो गड्ढा किया था ना। और सागरोपम, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का सागर होता है। आदि क्या रह गया? करोड़ यानी 7056, आगे 3 जीरो और आगे करोड़ के 7 जीरो। आदि काल मानों की अपेक्षा रखता है। प्रश्न अभी कितने सारे वो अनंत तक गिना हो, वो फिर उसमें प्रदेशों की अपेक्षा भी कहेंगे ना, अंगुल का असंख्यात भाग कहेंगे, जगत श्रेणी कहेंगे, जगत पत्र कहेंगे, लोक कहेंगे, असंख्यात लोक कहेंगे, अनंत काल कहेंगे, बहुत सारे आदि में सब आ गए। ये प्रश्न क्यों पूछा तो उसमें ये कालों के यूनिट्स बता सकेंगे। अब उसका उत्तर, जहन्नेन दशवास सहस्राणि। पहले तो नारकियों में ही जनरल पूछा था, 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर, परंतु अभी एक एक पृथ्वी की बात पूछेंगे। तो प्रथम पृथ्वी में नारकी जीव जघन्य से 10,000 वर्ष तक रहते हैं। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसकी प्ररूपणा ओघ नारकियों की प्ररूपणा में की जा चुकी है। ओघ नारकी यानी नारकी इन जनरल, उसको ओघ नारकी कहेंगे। मात्र ओघ कहेंगे तो चारों गतियों की अपेक्षा जो होता है उसको ओघ कहते हैं। जब ओघ नारकी कहेंगे तो नारकी इन जनरल की बात हो रही है। अब आगे का सूत्र, उक्कसेन सागरोपमम। प्रथम पृथ्वी में नारकी जी उत्कृष्ट से 1 सागरोपम काल तक रहते हैं, क्योंकि प्रथम पृथ्वी की 1 सागरोपम आयु स्थिति को बांधकर प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न होकर वह अपनी स्थिति को पूरी करके वहां से निकलने वाले तिरियंच व मनुष्यों के 1 सागरोपम की नरक स्थिति पाई जाती है। हाँ सब अभी इतने से पथड़े हैं पाथड़े ना उसके नरक के, कितने हैं पहले नरक के
13।
हाँ 13, तो हर एक पाथड़े की जो जघन्य उत्कृष्ट आयु निश्चित है। एक एक समय से बढ़ते हुए भेद कितने हो गए देखो, एक एक समय से बढ़ते हुए। अभी समय कितना सूक्ष्म है, 10,000 वर्ष और एक आवली होने तक तो असंख्यात भेद हो जाएंगे वहीं पर, ख्याल में आती है माँ। और ये सारे परावर्तनों में हमने देखा था, एक एक समय से बढ़ती हुई आयु को लेकर, पहले में पहले 10,000 वर्ष की आयु लेकर 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार वहां उत्पन्न होता है, तभी वो नरक भव परावर्तन चालू हो जाता है, फिर एक समय अधिक करके उत्पन्न हुआ। हो सकता है बीच में कितनी बार 33 सागर की उत्पन्न हो, वो काउंट नहीं करना, समय काउंट करना। और फिर बीच में नरक से निकला, कोई संगी पंचेंद्रिय हुआ, तिरियंच हुआ, एक इंद्रिय में चला गया, एक इंद्रिय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन करके वापस लौटा, फिर वो 10,000 वर्ष के और एक बार उसने आयु की, ये सब करके आए हम। अनादि का अर्थ क्या होता है वो पता नहीं हमको, अभी तो हमें हमने इतने बीते साल बर्थडे मनाए ना, तो इतने इतने बस इतने मालूम है, अरे बापरे हम इतने साल के हो गए
ना। अनादि से हम रखड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है?
मजा आ रहा है उसमें।
सच्चे देव गुरु शास्त्र को पहचाना नहीं,
पहचाना नहीं है, शरीर में ये सब उसमें आ गया, शरीर को ही मैं हूँ मान रहा है। इसमें से छूटने का मार्ग जो इसमें से छूट गए वो बता के गए, ऐसा नहीं कि बिना बता के गए, बिल्कुल किया है। अरे अनादि से क्या कराया पहले, स्वाध्याय की बात करती है कि नरक की बात कर रहे हैं? स्वाध्याय क्या, उपशम श्रेणी चढ़ के भी उतरा होगा तो भी क्या फायदा, अभी क्या है, अभी कहाँ है, मिथ्यात्व में है कि नहीं वो नक्की करो, पहले क्या कर चुके उसकी बात नहीं, अभी क्या करना है उसकी बात सोचनी है। हमारे वो पंजोबा शिवाजी महाराज के जमाने के थे, क्या क्या थे ऐसे, उससे कुछ नहीं होगा। पूर्व भाव में क्या किया, अभी तो मिथ्यात्व में है कि नहीं, पहले नक्की करके अभी सम्यक्त्व की बात करना है। हो सकता है कौन, क्योंकि हम तो देख रहे कितने जीव ऐसे कि जिन्होंने चार चार बार रूप समश्रेणी चढ़ के उतरे हैं, असंख्यात बार सम्यक को प्राप्त किया है, असंख्यात बार विसंयोजना की है, पांचवा गुणस्थान असंख्यात बार हो गया, अब भी वो भी निगोद आदि पर्यायों में सभी 14 जीव समासों में कहीं ना कहीं पड़े हैं, क्योंकि वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल जिनका चल रहा है वो कितना अनंत काल है, बहुत बड़ा काल है। रीना हमेशा पूछती थी, हमने भी पहले कभी प्राप्त किया होगा, हो सकता है, हम ना क्यों कहेंगे। हाँ हम, ये तो हम केवल ज्ञानी तो है नहीं, हम ये तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, वो सब पॉसिबिलिटीज हर एक के बारे में संभव है, परंतु अभी यहाँ क्या करना है, आगे क्या करना है, वो भी सोचना है ना। वो हमने किया था इसलिए उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ सहेलियों को ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं ना, उनसे हम जुदा हो जाएंगे, वो उधर ही पड़े हैं, तो उनको साथ देने के लिए थोड़ा हमको जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है ये कहते, यानी अपनी बात देखो, प्रत्येक जीव जुदा है। हमारे रिलेटिव अभी वो मिथ्यात्व में पड़े हैं, तो हम कैसे समय तो प्राप्त करें, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, यहाँ तो इसके बारे में तो कोई किसी का नहीं है, और कोई किसी को हेल्प भी नहीं करता है, और कोई किसी को कुछ नहीं है। अभी रावण नरक गए, उसके पुत्र तो मोक्ष गए, होता है कि नहीं ऐसा?
ऐसा भी है ना, हमारे रिलेटिव सारे गरीब है, तो हम काय को अमीर बने, ऐसा कोई सोचता है क्या? तो अमीर बन जाता है, तो हमारे सब बाकी रिलेटिव है, परिजन है, वो सारे मिथ्यात्व, तो मैं काय को सम्यक्त्व बनूं?
देखो ये तो हमारा इतना निकृष्ट काल है, ये पंचम काल, कल बात आई थी उसमें आत्मानुशासन में, इतने निकृष्ट काल में वो कैसे कैसे वहां सारा वर्णन आया है, तो इतना उत्कृष्ट मार्ग हमें मिला है, और अब भी नहीं चेतेंगे तो क्या इसका फायदा नहीं के बराबर होगा, क्योंकि ये सब हम देखते ना, इतने हम अनादि से और इतना सारा चक्कर काट काट कर अभी यहाँ पहुंचे है, और यहाँ पहुंचे नहीं, वो मार्ग मिल रहे हाथ में, और फिर भी उसका दुरुपयोग करेंगे, या उसकी कुछ ऐसा ही लाइट ले लेंगे उसके, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे कितने अनंतों बार तो हो चुका होगा कि नहीं होगा, कि मार्ग पहली बार थोड़े मिल रहा है। यहाँ क्या है कह रहे, देखो अभी ये तो एक एक समय से बढ़ती हुई सब आयु, यानी वो 10,000 वर्ष से लेकर एक एक समय से बढ़ती हुई सारे आयुओं के भेद यहाँ पाए जाते हैं। अब दूसरे नरक में कहेंगे एक सागर और एक समय, कितना डिफरेंस होगा एक समय वाला, वो उसकी मिनिमम होगी, तो यानी ऊपर के पहले दूसरे वगैरह जो उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय मिला दो, तो नीचे के नरकों की आयु होती है जघन्य वाली। देखो क्योंकि प्रथम पृथ्वी की 6 नंबर के सूत्र के नीचे पढ़ रही हूँ, एक सागरोपम आयु स्थिति को बांध कर प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न होकर वह अपनी स्थिति को पूरी करके वहां से निकलने वाले तीरियंच और मनुष्यों के एक सागरोपम की नरक स्थिति पाई जाती है, यानी वो जाने वाले तीरियंच मनुष्य थे वहां तो वो नारकी हो जाते। शंका, यह जो प्रथम पृथ्वी की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बतलाई गई, सो क्या सीमंत नरक रौरव भ्रांत उद्भ्रांत संभ्रांत असभ्रांत विभ्रांत तप्त त्रसित वक्रांत अवक्रांत और विक्रांत नामक 13 इंद्रकों की तथा उनसे संबद्ध श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक सब बिलों की यही आयु स्थिति होती या नहीं होती है, क्या कहना चाहते हैं? ये सारे बिल इसके नाम बताएं, 13 पटल होते हैं ना। हाँ सीमंत तक जो कहे थे पहला ने, दूसरे का नाम ही नरक है, तीसरे का नाम रौरव, चौथे का भ्रांत उद्भ्रांत वगैरह वगैरह, नामक 13 इंद्रकों की, इंद्रकों के भी नाम वही है जो उस पाथड़े का नाम होता है, या उस इंद्रक नाम से उसको हम कहेंगे। सीमंतक बिल, सेंटर का बिल, उसको कहेंगे इंद्रक बिल, उसके ये नाम है। जैसे स्वर्गों में भी जो सेंटर का जो होता है उसको इंद्रक विमान कहते हैं, नरकों में जो सेंटर वाला है उसको इंद्रक बिल कहते हैं, और उसके दिशाओं में जो होते हैं उसको श्रेणीबद्ध कहते हैं, और इन बिटवीन जो होते हैं उसको प्रकीर्णक कहते हैं, एट रैंडम कहीं पर भी। दिशा उपदिशा उसमें होती है स्वर्गों में, नरकों में केवल दिशा लिए ना, दिशा लिए। ये 13 इंद्रकों के नाम बताए सारे, यानी वो क्या, या सभी 13 पाथड़े जो कहेंगे पलट पटल, उनके सभी बिलों में इतनी जघन्य और उत्कृष्ट आयु है क्या, ये इनका प्रश्न है। प्रश्न ख्याल में आए, उसका समाधान। प्रथम पृथ्वी के उक्त समस्त बिलों की, उक्त समस्त बिल ने कौन से नहीं प्रथम हाँ उक्त समस्त बिलों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु इतनी ही नहीं होती, यानी वो समस्त बिल ने इंद्रक श्रेणीबद्ध प्रकीर्णक और सभी पटल, सभी पटलों की उतनी नहीं होती, यानी सभी पटलों के सभी बिल समस्त कार्य होते हैं, जघन्य और उत्कृष्ट आयु इतनी ही नहीं होती, किंतु सब बिलों की पृथक पृथक जघन्य और उत्कृष्ट आयु होती है, वह इस प्रकार है। इन्हें जो नाम वहां लिए ना 13 पटलों के बिलों के, इंद्रक बिलों के, तो वहां के श्रेणीबद्ध प्रकीर्णक सहित वहां का इंद्रक लेना, उनकी पहले पटल वाली आयु, फिर दूसरे पटल की, फिर तीसरे पटल की, अलग अलग है। हाँ, सबसे जघन नरक है उसमें 13 लेयर्स है। नहीं 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 10,000 वर्ष मिनिमम आयु है, उससे कम नहीं होता। तो पहले पटल में वो होगा, नीचे नीचे की आयु ज्यादा ज्यादा है। ऊपर से नीचे, पहला दूसरा तीन, देखो स्वर्गों में नीचे से ऊपर गिनते हैं। सातवां नरक कहाँ है तो, और पहला तो पटल भी ऊपर से नीचे गिनेंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अपने श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों सहित सीमंत नामक प्रथम इंद्रक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष प्रमाण है, 10,000 से 90,000 तक, ये वहां तक है। नहीं, उसके अर्थ एक एक समय से बढ़ते हुए इतने भेद हो गए वहां पर, तो नारकी कितने हो सकते हैं। याद समझ में आती बात, क्या 10,000 वर्ष का एक ही नारकी होगा, तो 10,000 प्लस एक समय वाले कितने हो गए, 10,000 दो समय वाले कितने हो गए। अभी इतने एक आवली में असंख्यात भेद होते हैं, तो यहाँ तो 80,000 तो यहाँ भेद हो गए ना वर्षों के, तो उसमें समयों के भेद गिनाओ, तो असंख्यात जुदे जुदे आयु वाले हैं, और हर एक आयु वाले कितने कितने नारके हो गए। दूसरे पाथड़े में, पटल कहो या पाथड़ा कहो एक ही बात है, जघन्य आयु एक समय अधिक 90,000 वर्ष, ऊपर की जो पहले वगैरह की उत्कृष्ट है उसमें एक ऐड करो, और उत्कृष्ट 90,00,000 वर्ष प्रमाण है, यानी देखो ना 90,000 ने 1,00,000 में तो 10,000 कम, और वहां से लेकर वहां की जघन्य आयु वो वाला हो गया, ऐसा नहीं, वहां की जघन्य आयु 90,000 प्लस एक समय ज्यादा, और अधिक से अधिक 90,00,000 हो जाती है। तीसरे पाथड़े में जघन्य आयु एक समय अधिक 90,00,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्व कोटि प्रमाण होती है। अब एक पूर्व कोटि में हमने देखा ना, एक पूर्व में इतना 70,56,000 करोड़ वर्ष, और इसे एक पूर्व दो पूर्व, तो इसे करोड़ पूर्व, और ऐसे करोड़ पूर्व एक दो नहीं, असंख्यात करोड़ पूर्व, तीसरे पातड़े में, चतुर्थ पातड़े में, चतुर्थ पाथड़े में जघन्य आयु, एक समय अधिक असंख्यात पूर्व कोटि, और उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम के दशम भाग होती है, यानी सागर का दसवां भाग चौथे पाथड़े में होगी उत्कृष्ट आयु। यही सागरोपम का दशमांश, दसवां भाग है ना, दशमांश, दशमांश नहीं, दशमांश श करो। आगे के पाथरों में जघन्य और उत्कृष्ट आयु प्राप्त करने के लिए मुख कहलाता है, क्योंकि अभी ये कितना हुआ, सागर का एक दशांश हुआ चौथे पाथरे में, और आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इतने पाथरे बाकी है। और उसमें मैक्सिमम कितनी होने वाली है, एक सागर होने वाली। मुख क्यों कहते हैं, जो उसमें अभी हम हिसाब करना है इतने इतने बढ़ेंगे, तो उसको मुख है ना, अल्प है। पहले तो संख्यात वर्षों की थी, इसलिए उसको अलग से बताया, हर एक का अलग अलग। तथा पूरा एक सागरोपम भूमि कहलाती है। जैसे देखो, हमको जब अधोलोक का हमने वर्णन देखा था, एक सागर से लेकर, हाँ हम पढ़ रहे हैं 116 पेज पर, यहाँ चौथे पाथड़े की उत्कृष्ट आयु हमने देखी, सागरोपम का दसवां भाग, एक दशांश सागर, और आगे वो एक सागर तक हमको ले जाना है 13वें पटल में। तो यहाँ जो मुख और भूमि, ऐसे दो शब्द आते हैं, गणित में कहीं कैलकुलेट करना है। जैसे हम अधोलोक की बात, मध्यलोक एक एक राजू प्रमाण है, और नीचे सात राजू हो जाता है, तो एक से सात राजू तक अगर बढ़ना है तो कितना कितना बढ़ेगा, हाँ हम वहां की बात क्या पूछ रहे हैं, हम क्या पूछा अभी, सवाल क्या पूछा, आपका लक्ष्य वहीं इधर ही है। हाँ, हमने क्या देखा, एक राजू से सात राजू होगा नीचे लोकाकाश पूरा, तो कितने राजू तक, यानी नीचे की हाइट उसकी सात राजू है, और सात राजू में बढ़ा कितना, छह राजू, तो मुख एक राजू और भूमि सात राजू। ये मुख और भूमि क्या है वो समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। एक राजू से सात राजू हुआ, कितने डिस्टेंस में, सात राजू में, प्रति राजू कितना बढ़ेगा, एक एक राजू नहीं बढ़ेगा, छह राजू बढ़े, सात राजू में मिलकर छह राजू बढ़े, तो एक राज्य में छह सप्तमांश बढ़ेंगे। ये जैसे निकाला ना हमने, अभी यहां बताएंगे कैसी पद्धति निकालनी। तो देखो, यहाँ का जो सागर का दशांश है उसको मुख कहेंगे, और पूरा एक सागरम है सागरोपम, उसको भूमि कहेंगे, क्योंकि वह मुख की अपेक्षा बहुत है। भूमि को मुख के समान भागों में खंडित करके, उसमें से मुख को घटाने पर, नीचे से छठी लाइन पढ़ रहे हम, हाँ देखो सुनो, यहां में सागर का दशांश से लेकर सागर तक बढ़ने वाला है, तो सागर में से एक दशांश सागर माइनस करना, दो दस दशांश यानी एक सागर, माइनस एक दशांश यानी नौ दशांश रह जाएंगे। तो भूमि को मुख के समान भागों में खंडित करके उसमें से मुख को घटा देने पर शेष मान यानी प्रमाण इतना है, नौ दशांश सागर। उच्छेद दश है, क्योंकि चतुर्थ आदि 13वें पाथड़े पर्यंत 10 पाथड़ों का आयु प्रमाण निकालना है, चौथे से लेकर की सबकी बात है, चौथे की एक दशांश है और 13वें की एक सागर है। 10 स्थानों में अवस्थित हानि वृद्धि पाई जाती है, अभी इसमें समान हानि वृद्धि होगी, यानी हीनाहीन से अधिक की ओर कहेंगे तो हम कहेंगे वृद्धि, नीचे से ऊपर कहेंगे तो कहेंगे हानि। इन दस स्थानों में से चतुर्थ पाथड़े संबंधी प्रथम स्थान में तो वृद्धि है ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेसिक बता दिया, वन टेंथ सागर, और यहाँ से आगे प्रति पटल वृद्धि होगी। तो इसलिए एक को दस में से घटाने पर शेष नौ का रहेंगे। अभी नौ में वृद्धि होगी, वृद्धि कितनी होगी, नौ बटे दस सागर होगी। भाग देने से जो लब्ध आता है वह वृद्धि का प्रमाण है, यानी नौ में नौ दशांश होने वाले हैं, तो एक में एक दशांश वृद्धि होगी, यानी प्रति पटल एक दशांश बढ़ेंगे। यह निम्न गाथा उपयोगी है, ये जहां मुंह और भूमि का जो गणित निकालना है उसके लिए बता रहे हैं, एक नंबर की यहाँ के। मुह भूमिण विशेषो उच्छय भजिदो दुहो हवे वड्ढी वड्ढी इच्छुणीदा मुह सहिया हो वड्ढी फलम। मुख और भूमि का जो विशेष, विशेष यानी डिफरेंस अर्थात अंतर हो, उसे उच्छेद से भाजित कर देने पर जो वृद्धि का प्रमाण आता है, उस वृद्धि को अभीष्ट से गुणा करके मुख में जोड़ने पर वृद्धि का फल प्राप्त होता है। यानी वो डायरेक्ट दूसरे पातरे में, यानी वो तो चौथे को हमने पहला नंबर दे दिया, और वहां से जितने नंबर का निकालना है उसके लिए गणित उपयोगी पड़ता है। उससे यानी कितने में वो वृद्धि हुई है, जैसे हमने आपको लोकाकाश का उदाहरण दिया था, एक राजू से सात राजू हुआ, तो भूमि हमारी सात है और मुंह हमारा एक है, सात में से एक माइनस किया तो छह रह गया, उच्छेद हमारा सात था, सात में छह की वृद्धि हुई है ना, इस तरह से उसका कर देना है। वो वृद्धि का प्रमाण हमारा छह सप्तमांश वहां आया था, यहाँ पर कैसे करना, चौथे वाले को एक नंबर देना और चौथे से लेकर तेरहवे तक गिनना है, तो चौथे की आयु है एक दशांश सागर और अंतिम वाली एक सागर है, एक सागर में से एक दशांश घटाया तो नौ दशांश रह गए, तो नौ दशांश अभी रह गए। अब इसके बाद वृद्धि कितने बार होगी, तो नौ बार होगी, तो हर बार एक दशांश की वृद्धि होती जाएगी। तो दो दशांश, तीन दशांश, चार दशांश आगे आगे की आयु होगी। पुनः इस प्रकार लाए हुए वृद्धि के प्रमाण को दस स्थानों में स्थापित कर एक आदि एक एक अधिक के क्रम से बढ़ी हुई शलाकाओं से गुणित कर, क्योंकि जो पहला नंबर दूसरा नंबर उसको शलाका कहेंगे, लब्ध को मुख में मिला देने से जो एक दशांश है उसमें और एक दशांश मिला जाएंगे तो दो दशांश, फिर और एक तीन दशांश, प्रत्येक अभीष्ट पाथड़े का आयु प्रमाण निकल आता है। इस प्रकार निकला हुआ चतुर्थ आदि पाथड़ों का आयु प्रमाण इस प्रकार है। देखो उसको क्रम दिया, चौथे पाथड़े को एक क्रमक दिया और तेरहवें पाथड़े को दस नंबर दिया, तो पाथड़ा क्रमांक चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह लिखा है, उसके ऊपर क्रम उसका एक दो तीन चार दस तक बताया। आयु का प्रमाण हाँ एक दशांश से लेकर लास्ट में एक होने वाला है, तो प्रति में एक दशांश बढ़ेगा, तो एक दशांश, दो दशांश, तीन दशांश, चार दशांश का अर्थ होता है दो पंचमांश, पांच दशांश का अर्थ होता है एक द्वितीयांश, छह दशांश का अर्थ होता है तीन पंचमांश, सात दशांश तो लिखा ही है वो स्पष्ट बराबर नहीं छपा है, आठ दशांश का अर्थ होता है चार पंचमांश, नौ दशांश तो लिखा ही है और दस दशांश का अर्थ होता है एक, यहाँ पूछते हैं यह अर्थ सूत्र में तो कहा नहीं गया, फिर वह कहाँ से जाना जाता है, ये मुह भूमि विशेष वगैरह तो कहते हैं, क्यों नहीं कहा गया, देशामर्शक भाव से कहा ही गया है, यानी वो शॉर्ट में बताया तो उसमें वो बात गर्भित हो ही जाती है सब, शंकाकार पूछते प्रस्तुत सूत्र यानी ये जो बताया हुआ सूत्र देशामर्श कैसे जाना जाता है, यानी उसी में से वो भाव निकलते है कैसे जाना, उसका समाधान गुरु जी के उपदेश से जाना जाता है कि प्रस्तुत सूत्र देशामर्शक है, यानी उसी में से वो निकाल कर कैसे करना वो पढ़ाया जाता है। तो गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं, उसके द्वारा ये पता चल जाता है। अब बाकी बात हम कल पढ़ेंगे। जावानी के सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सनादेत हो।